एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी की जीन, एक आत्मीय इतिहास। ये किताब सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है।
हाँ बिल्कुल,
हमारी पहचान, हमारा अतीत, हमारा भविष्य, सब कुछ।
सही। और ये किताब वो बड़े सवाल उठाती है, भाई हम हैं कौन, हमें अपने माँ बाप, अपने पुरखों से विरासत में क्या मिलता है, और ये जो जीन शब्द हम सुनते रहते हैं, ये आखिर है क्या?
और ये सवाल आज के जमाने में, मतलब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये सब बातें हो रही हैं, तब तो और भी जरूरी हो गए, है ना?
बिल्कुल, तो ये किताब हमें इन सब चीजों को समझने में मदद करती है।
हाँ, वादा तो यही करती है।
तो शुरू करते हैं लेखक से, सिद्धार्थ मुखर्जी। ये नाम कई लोगों ने सुना होगा।
हाँ, सुना ही होगा। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर है, कैंसर रिसर्चर है, और पुलित्जर प्राइज भी जीत चुके अपनी पिछली किताब के लिए।
हाँ, द एम्परर ऑफ ऑल मैलडीज, कैंसर पे जो थी वो भी जबरदस्त किताब थी।
बिल्कुल, और मुखर्जी की खासियत यही है कि वो मुश्किल साइंटिफिक बातों को भी कहानियों की तरह सुनाते हैं, बहुत मानवीय तरीके से।
अच्छा,
और जीन का विषय तो उनके लिए सिर्फ अकेडमिक नहीं है, उन्होंने किताब में बताया है कि उनके अपने परिवार में कुछ मानसिक बीमारियों का इतिहास रहा है, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीजें। तो ये जो पर्सनल कनेक्शन है ना, इससे वो जीन की कहानी को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी महसूस करते हैं और बताते हैं। मतलब विज्ञान और इंसानियत दोनों साथ साथ चलते हैं उनकी लेखनी में।
ये बात तो किताब को और भी खास बना देती है। तो फिर ये किताब है क्या असल में? कोई भारी भरकम साइंस टेक्स्ट बुक तो नहीं?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इसे आप ऐसे समझें कि ये जीन की बायोग्राफी है। जैसे किसी इंसान की जीवनी होती है ना, उसका जन्म, बचपन, बड़े होना, उतार चढ़ाव।
अच्छा, जीन की जीवनी। ये तो दिलचस्प आइडिया है।
हाँ, तो ये किताब हमें टाइम में पीछे ले जाती है, अरस्तु, पाइथागोरस के जमाने से शुरू करती है, जब लोग सोचते थे कि बच्चों में गुण कैसे आते हैं, फिर मेंडल और उनके मटर के दानों तक।
हाँ हाँ, ग्रेगर मेंडल, स्कूल में पढ़ा था।
बिल्कुल, फिर डीएनए की खोज और आज जो जीन एडिटिंग तकनीकें आ गई हैं वहां तक। ये पूरी एक कह सकते हैं महायात्रा है विज्ञान के इतिहास की।
और उसका मेन पॉइंट क्या है, मतलब किताब कहना क्या चाहती है?
अब मेरे ख्याल से दो तीन मोटी बातें हैं। पहली तो ये कि जीन का जो आइडिया है, ये शायद मॉडर्न बायोलॉजी का सबसे ताकतवर आइडिया है। इसने हमारी सोच बदल दी है, अपनी विरासत, पहचान, यहाँ तक कि किस्मत के बारे में भी। दूसरी बात, ये सिर्फ साइंटिस्टों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। सदियों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या मिला है और हम आगे क्या देंगे।
और तीसरी बात,
तीसरी ये कि अब हम सिर्फ अपनी जेनेटिक कहानी को पढ़ नहीं रहे हैं।
अच्छा,
हाँ, अब हम धीरे धीरे उसे लिखने भी लगे हैं। हमारे पास जीन को पढ़ने, समझने और यहाँ तक कि बदलने की ताकत आ रही है। तो किताब पूछती है, इस नई ताकत का मतलब क्या है, दवा के लिए, समाज के लिए, खुद इंसान होने के मायने के लिए।
और जैसा आपने कहा, लेखक की अपनी पारिवारिक कहानी भी इसमें बुनी हुई है।
हाँ, वही इसे आत्मीय बनाती है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं दे रहे, वो एक व्यक्तिगत सफर भी साझा कर रहे हैं।
चलिए, तो इस सफर पर निकलते हैं। किताब के शुरू में तो हम बहुत पीछे जाते हैं, है ना, प्राचीन काल तक।
हाँ, अरस्तु, पाइथागोरस जैसे लोग अंदाजा लगाते थे, पर ठोस कुछ नहीं पता था। असली कहानी तो शुरू होती है 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया में एक मठ के बगीचे से।
मेंडल।
हाँ, ग्रेगर मेंडल, वो पादरी थे और मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बड़े ध्यान से।
और उन्होंने वो नियम दिए थे कि कुछ गुण हावी होते हैं, कुछ दबे रह जाते हैं, डोमिनेंस वाले।
बिल्कुल, प्रभाविता, डोमिनेंस, पृथकरण, सेग्रीगेशन, मतलब हर गुण के लिए जो कारक हैं वो अगली पीढ़ी में अलग अलग जाते हैं, और स्वतंत्र वर्गीकरण, इंडिपेंडेंट असॉटमेंट, यानी अलग अलग गुण एक दूसरे से आजाद होकर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक नियम उन्होंने खोज निकाले,
वो भी सिर्फ मटर के दानों से।
हाँ, और सबसे अजीब बात ये कि उनके काम पर दशकों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
सच में? क्यों?
शायद वो अपने समय से बहुत आगे थे, लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कितना बड़ा काम है।
होता है ऐसा। फिर दोबारा कैसे सामने आया उनका काम?
20वीं सदी की शुरुआत में फिर थॉमस हंट मॉर्गन जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फल मक्खियों पर काम किया। वो छोटी छोटी मक्खियां होती है ना?
हाँ, ड्रोसोफिला।
सही, मॉर्गन और उनकी टीम ने साबित किया कि मेंडल के वो कारक असल में क्रोमोसोम्स पर होते हैं। गुणसूत्रों पर।
अच्छा, तो अब पता चल गया कि ये विरासत का सामान रखा कहाँ है।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन यहीं से कहानी में एक डरावना मोड़ भी आता है।
आप यूजेनिक्स की बात कर रहे हैं?
हाँ, जेनेटिक्स के इतिहास का वो काला अध्याय। जैसे ही थोड़ी समझ बनी कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, फ्रांसिस गैल्टन जैसे लोगों ने, वो डार्विन के कजिन थे, उन्होंने यूजेनिक्स का आइडिया दिया, मतलब अच्छी नस्ल बनाना। उनका मानना था कि समाज के जो बुरे गुण हैं, जैसे गरीबी, अपराध, कुछ बीमारियां, उन्हें रोका जा सकता है और अच्छे गुणों को बढ़ावा दिया जा सकता है इंसानों की ब्रीडिंग करके।
सुनने में कितना अजीब और खतरनाक लग रहा है।
और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। अमेरिका जैसे देशों में हजारों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि उन्हें दिमागी रूप से कमजोर या समाज के लिए अयोग्य मान लिया गया।
हे भगवान!
नस्लीय भेदभाव को साइंटिफिक जामा पहनाने की कोशिश हुई, और यही सोच फिर आगे चलकर नाजी जर्मनी की नीतियों का आधार बनी। मुखर्जी इस हिस्से को बहुत गंभीरता से लेते हैं, एक चेतावनी की तरह कि देखो ज्ञान का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है।
ये वाकई एक जरूरी सबक है। तो इस अंधेरे दौर के बाद विज्ञान फिर सही रास्ते पर आया, डीएनए की खोज।
हाँ, कहानी आगे बढ़ती है 1940 और 50 के दशक में। अब साइंटिस्ट ये पता लगाने में लगे थे कि क्रोमोसोम में आखिर वो चीज क्या है जो सारी जानकारी रखती है, प्रोटीन है या डीएनए। एवरी मैक्लियॉड और मैकार्थी नाम के साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिनसे ये साफ हो गया कि ये डीएनए ही है जेनेटिक मटीरियल। लेकिन सवाल अब ये था कि ये डीएनए दिखता कैसा है, काम कैसे करता है।
और फिर एंट्री हुई वॉटसन और क्रिक की, वो डबल हेलिक्स वाली कहानी।
हाँ, ये तो साइंस हिस्ट्री की सबसे फेमस कहानियों में से एक है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक कैम्ब्रिज में थे, मॉडल बना रहे थे। उधर लंदन में मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डीएनए की तस्वीरें खींच रहे थे।
रोजालिन फ्रैंकलिन, उनका नाम अब ज्यादा लिया जाने लगा है।
हाँ, और सही भी है। उनकी एक तस्वीर थी, फोटोग्राफ 51। वो वॉटसन और क्रिक के लिए एक बहुत बड़ा क्लू साबित हुई। हालांकि इस बात पर काफी बहस रही है कि फ्रैंकलिन को उनके काम का पूरा क्रेडिट मिला या नहीं उस समय। खैर, आखिरकार 1953 में वॉटसन और क्रिक ने वो डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया, वो घुमावदार सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर।
और वो स्ट्रक्चर अपने आप में जीनियस था, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि उसे देखते ही समझ आ गया कि डीएनए कॉपी कैसे होता होगा। सीढ़ी बीच से खुलती होगी और दोनों हिस्से अपने नए साथी बना लेते होंगे। और जानकारी कैसे स्टोर होती होगी? वो जो सीढ़ी के डंडे हैं, बेस पेयर्स, उनके क्रम में, ए टी सी जी।
ये तो कोड लैंग्वेज जैसी हो गई।
हाँ, और फिर इस कोड को तोड़ने की रेस शुरू हुई। मार्शल निरनबर्ग, अपने हरगोविंद खुराना, इन जैसे कई हीरोज ने पता लगाया कि डीएनए के ये अक्षर प्रोटीन बनाने के लिए शब्द कैसे बनाते हैं, तीन तीन अक्षरों के कोडॉन।
और फिर आया सेंट्रल डॉगमा।
सही, वो बेसिक प्रिंसिपल कि जानकारी डीएनए से आरएनए में जाती है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये जैसे जीवन के काम करने का मूल मंत्र पता चल गया।
वाह, तो अब हमारे पास जीन का पता था, उसका स्ट्रक्चर था, उसकी भाषा भी समझ आ गई थी। अगला कदम क्या था? क्या हम उसे बदलने की सोचने लगे?
हाँ, 70 का दशक आते आते जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू हो गई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक आए, मतलब जीन को काटकर चिपकाना,
कट पेस्ट।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब एक जीव का जीन निकालकर दूसरे में डालना मुमकिन हो गया। इससे बड़ी उम्मीदें जगी, जैसे इंसानों का इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डालकर बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाया जाने लगा।
ये तो बहुत काम की चीज हुई।
हाँ, लेकिन इसने डर भी पैदा किया कि कहीं हम कोई खतरनाक चीज ना बना दें, कोई सुपर बग।
अच्छा, इसीलिए वो असिलोमार कॉन्फ्रेंस हुई थी।
बिल्कुल, 1975 में साइंटिस्ट खुद इकट्ठे हुए और इस पे चर्चा की कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये एक अच्छी बात थी कि विज्ञान ने खुद को रेगुलेट करने की कोशिश की। इसके बाद जीन थेरेपी के प्रयास शुरू हुए, मतलब खराब जीन को ठीक करके बीमारी का इलाज करना। कुछ सफलता मिली, पर फिर 1999 में जेसी जेलसिंगर नाम के एक लड़के की मौत हो गई जीन थेरेपी ट्रायल के दौरान।
ओह, ये तो दुखद है।
हाँ, बहुत दुखद। इससे फील्ड को बड़ा झटका लगा। पता चला कि उतना आसान नहीं है जितना लगता है, इसमें खतरे भी हैं।
और फिर आया वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
हाँ, पूरी इंसानी जेनेटिक किताब को हर्फ बहर्फ पढ़ने का मिशन 2003 में ये पूरा हुआ। हमें पता चला कि हमारे अंदर करीब 20-25 हजार जीन हैं।
बस, मुझे लगा था ज्यादा होंगे।
हाँ, सबको यही लगा था, पर पता चला कि कहानी सिर्फ जीन की गिनती में नहीं है। यहीं पर एपिजेनेटिक्स की बात आती है।
एपिजेनेटिक्स, ये क्या है?
एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन के ऊपर का कंट्रोल, मतलब आपका डीएनए सीक्वेंस बदले बिना भी आपके अनुभव, आपका खान पान, आपका माहौल, ये सब तय कर सकते हैं कि कौन सा जीन ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ।
अच्छा, मतलब जीन सब कुछ तय नहीं करते?
बिल्कुल नहीं, ये वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस को एकदम नया मोड़ देता है। दोनों मिलकर काम करते हैं।
और किताब के आखिर में हम पहुंचते हैं क्रिस्पर पर, ये आजकल बहुत सुनने में आता है।
हाँ, क्रिस्पर कैस 9, ये एक तरह की जेनेटिक कैची है, बहुत ही सटीक। इससे डीएनए को काटना और बदलना बहुत आसान हो गया है।
तो इससे तो क्रांति आ सकती है।
आ ही रही है। जेनेटिक बीमारियां ठीक करने से लेके फसलें सुधारने तक इसकी संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन यहीं पर मुखर्जी वापस अपनी पारिवारिक कहानी पर लौटते हैं, मानसिक बीमारियों की जटिलता पर। क्या क्रिस्पर जैसी चीजें इनका हल है?
शायद नहीं, ये बीमारियां बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं।
हाँ, और फिर वो सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या हमें इंसानी जर्म लाइन को बदलना चाहिए, मतलब स्पर्म या एग सेल्स को, ताकि वो बदलाव अगली पीढ़ियों में भी जाएं?
ये तो बहुत बड़ा नैतिक सवाल है।
बिल्कुल, हम अपने जेनेटिक कोड के सिर्फ पाठक नहीं रहे, अब हम लेखक बनने की कगार पर हैं। पर क्या हम ये जिम्मेदारी उठाने लायक हैं? किताब हमें इसी सवाल के साथ छोड़ती है।
सचमुच बहुत गहरे सवाल हैं ये। तो अगर हम किताब के मुख्य संदेशों को समेटें, तो पहला तो यही हुआ कि जीन सिर्फ बायोलॉजिकल कोड नहीं, वो इतिहास भी हैं।
एकदम, हमारे जीन बताते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए, कैसे विकसित हुए, किन बीमारियों का खतरा लेकर हम चलते हैं। जैसे अपने यहाँ देखें, कई परिवारों में डायबिटीज या दिल की बीमारी ज्यादा होती है ना?
हाँ, ये तो है।
या कुछ खास नैन नक्श पीढ़ी दर पीढ़ी दिखते हैं, ये सब जीन की कहानी है। पर ये पूरी कहानी नहीं है, ये डेस्टिनी नहीं है।
और दूसरा बड़ा सबक वो यूजेनिक्स वाला है कि जेनेटिक ज्ञान दोधारी तलवार है।
बिल्कुल, जो ज्ञान बीमारी ठीक कर सकता है, वही भेदभाव का हथियार भी बन सकता है। यूजेनिक्स का इतिहास हमें बार बार ये याद दिलाता है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। सोचिए, कल को शादी के लिए जेनेटिक कुंडली मिलाई जाने लगे या नौकरी में।
हाँ, ये डर तो है।
तीसरा थीम जिसकी हमने बात की कि वो नेचर वर्सेस नेचर वाली बहस अब पुरानी हो गई।
हाँ, अब ये नेचर और नर्चर है।
सही का, जीन और माहौल के बीच लगातार बातचीत चलती रहती है, एपिजेनेटिक्स यही दिखाता है। जुड़वा बच्चों को देखें, जीन एक जैसे पर फिर भी अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव, उनका माहौल अलग होता है, किस्मत लिखी हुई नहीं है।
और चौथा सबसे जरूरी संदेश शायद नैतिक जिम्मेदारी का।
हाँ, क्रिस्पर जैसी ताकत हमारे हाथ में आ गई है, हम जीवन का कोड बदल सकते हैं। पर क्या हमें बदलना चाहिए? कहाँ लाइन खींचें? डिजाइनर बेबी, जेनेटिक अमीर और गरीब, ये सवाल अब साइंस फिक्शन नहीं है।
हमें इन पर सोचना होगा एक समाज के तौर पर।
बिल्कुल,
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एकदम चिपक जाती हैं दिमाग में। मुखर्जी लिखते भी कमाल का हैं।
हाँ, बहुत यादगार तरीके से लिखते हैं। जैसे वो कहते हैं, जीन एक ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि एक रेसिपी है।
रेसिपी मतलब?
मतलब जैसे खाना बनाते वक्त सिर्फ रेसिपी काफी नहीं होती, सामान कैसा है, बनाने वाला कैसा है, माहौल कैसा है, सब मिलकर तय करते हैं कि डिश कैसी बनेगी। वैसे ही जीन अकेले काम नहीं करते, वो दूसरे जीन के साथ, माहौल के साथ, हमारी आदतों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, नतीजा फिक्स नहीं होता।
वाह, ये तो बहुत अच्छी उपमा है। और एक और बात जो आपने बताई थी, आनुवंशिकी के इतिहास का सबसे शक्तिशाली विचार कि हमारे गुणों को चुना और बदला जा सकता है, इसका सबसे खतरनाक विचार भी है।
हाँ, ये सीधा यूजेनिक्स के खतरे की तरफ इशारा है। ये आइडिया कि हम इंसान को बेहतर बना सकते हैं, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसमें बहुत बड़ा खतरा छुपा है।
सही, और वो नेचर नर्चर वाली बात पर भी एक अच्छी लाइन थी, जीन प्रस्तावित करता है लेकिन पर्यावरण निपटारा करता है।
हाँ, मतलब जीन आपको एक संभावना दे सकते हैं, एक झुकाव दे सकते हैं, जैसे शायद किसी में डिप्रेशन का जेनेटिक रिस्क हो, पर उसका जीवन कैसा है, उसे सपोर्ट मिलता है या नहीं, उसके अनुभव कैसे हैं, ये सब मिलकर तय करेंगे कि वो रिस्क हकीकत बनेगा या नहीं। और आखिर में, जो आज के लिए सबसे जरूरी है, क्रिस्पर जैसी तकनीकों से हम अपने विकास पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं, हम अपने जेनेटिक कोड के पाठक से लेखक बन रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हमें करना चाहिए।
ये सवाल तो हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है शायद।
हाँ, और इसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।
तो ये सब इतनी ज्ञान की बातें, इनका हमारी आम जिंदगी से क्या कनेक्शन है? कोई आम इंसान इस जानकारी का क्या करे?
मुझे लगता है कई लेवल पर कनेक्शन है। सबसे पहले तो अपनी सेहत को लेकर, अगर हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री पता है कि परिवार में कौन सी बीमारियां चलती आ रही हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर,
हाँ,
तो हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, डॉक्टर से उस बारे में बात कर सकते हैं, बचाव के तरीके अपना सकते हैं।
हाँ, ये तो है, और शायद अपने परिवार के लोगों को समझने में भी मदद मिले। कई बार हम सोचते हैं कि कोई आलसी है या चिड़चिड़ा है, हो सकता है उसके पीछे कोई जेनेटिक या बायोलॉजिकल वजह हो।
बिल्कुल, इससे जो बीमारियों से जुड़ा एक कलंक होता है वो भी कम हो सकता है। हम उन्हें सिर्फ किसी की कमी मानने की बजाय एक मेडिकल इशू की तरह देख सकते हैं।
आजकल वो जेनेटिक टेस्टिंग भी तो होती है, 23andMe वगैरह।
हाँ, तो ये किताब उन टेस्ट के रिजल्ट्स को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करती है, ये समझने में कि उन रिजल्ट्स का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है, ताकि हम सिर्फ रिपोर्ट देखकर घबराए नहीं, बल्कि डॉक्टर से ढंग से बात कर पाएं।
और जैसा हमने पहले कहा, ये हमें बड़ी बहस में शामिल होने लायक बनाती है। क्रिस्पर पर, जीन एडिटिंग पर, क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम अपनी राय बना सकते हैं।
और यूजेनिक्स के इतिहास को जानने से हम आज के समय में होने वाले किसी भी तरह के जेनेटिक भेदभाव को पहचान सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें अपने आप को, अपने इतिहास को और अपने भविष्य को एक नए लेंस से देखने में मदद करती है।
हाँ, ये विज्ञान भी है, इतिहास भी है और हमारी अपनी कहानी भी।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि किस्मत जैसी कोई चीज है भी तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। जीन हमें एक शुरुआत देते हैं, कुछ झुकाव देते हैं, पर हमारे चुनाव, हमारा माहौल, हमारी कोशिशें, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी बनाते हैं। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अपनी कहानी में भागीदार हैं।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि विज्ञान का ये पूरा सफर कितना मानवीय है। इसमें गलतियां हैं, भटकाव हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, जुनून है, खोज की खुशी है। ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। और मुखर्जी हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है, खासकर जब ज्ञान इतना शक्तिशाली हो। हम वाकई एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें तय करना है कि हम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे।
क्या हम समझदारी से काम लेंगे या अपनी ही बनाई हुई ताकत के आगे बेबस हो जाएंगे, ये सवाल हमारे साथ रहेगा।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।